इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के उसने इनकार किया इस बात से कि वो सजदा करने वालों में हो जाए। कहा है इबलीस, क्या हो गया तुझको, तू क्यों ना सजदा करने वालों में हुआ? कहने लगा, मैं नहीं सजदा करता बशर को जिसको तूने सड़ी हुई काली कीचड़ वाली मट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस इसमें से निकल जा, यानी जन्नत में से, तू तो रांधा दरगाह है और बेशक तेरे ऊपर लानत है यौम दीन तक। क्या पता चला, फरिश्तों की तरह इबलीस को भी सजदे का हुक्म था, अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, इबलीस ने इनकार किया, और वजह तकब्बुर भी थी और इनकार भी था, और इस इनकार और तकब्बुर की वजह से इबलीस मरदूद करार पा दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया, रिजेक्टेड। मरदूद रद्द के लफ्ज़ है, जैसे रद्दी की टोकरी होती है ना, आप रिजेक्टेड थिंग्स उसमें डालते हैं। अब जब इबलीस को इस तरह अल्लाह ताला ने कहा तो उसकी तो ना भड़क उठी, लिहाजा उसको गुस्सा आया कि ये क्या हुआ, इस आदम की वजह से मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। अब देखिए, हुक्म किसका था? अल्लाह का। आदम बीच में एक ऑब्जेक्ट है बस। अगर अल्लाह ने सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस को अल्लाह ताला के साथ बात करनी थी ना, लेकिन अल्लाह ताला के मुकाबले पे नहीं आ सका, लेकिन आदम के पीछे पड़ गया। बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि आज अगर हम खाना काबा की तरफ या बैतुल्ला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं तो कोई बैतुल्ला से झगड़ने लग जाए, तुम मक्का में क्यों हो, तुम पत्थर के ही तो हो, हम उधर क्यों जाएं, इधर आ जाए, तो बेतुका बने ना। अल्लाह से नहीं मुकाबला किया इब्लीस ने। ये एक बड़ा अहम नुक्ता आज नोट कीजिए, जो आपने शायद पहले ना कभी नोट किया हो। एक बच्चा है ना, अकेला बच्चा था घर में, अब छोटा भाई आ गया, बहन आ गई, उसने देखा कि मेरी माँ इस नए बच्चे से, न्यू बॉर्न बेबी के साथ बड़ी मशगूल हो गई है। अब जुर्म तो माँ का है ना कि मुझे कम टाइम दे रही है और दूसरे को ज़्यादा दे रही है, तो उसको माँ से लड़ना चाहिए। लेकिन बच्चा क्या करता है, छोटे भाई बहन के साथ उसको पकड़ के ऐसे खींचेगा जैसे ये को बिल्ली का बच्चा, कभी उसको नाखून मारेगा। तो ये हसद के जज्बात, ये सिबलिंग जेलेसी वाली कैफियत इधर महसूस कीजिए, लिहाजा गुस्से में आकर अपने कुछ नापाक अजायम का जिक्र करता है 36 में, 39 में, वक़ाला रब्बी। अब ज़रा इस पे गौर कीजिएगा, आज हमारे यहाँ दुआ से मुतल्लिक़ के गलत फहमी है उसका इजाला होगा। इधर कहने लगा है, मेरे रब बस मुझको मोहलत दे दोबारा उठाए जाने के दिन तक। कहा गया, बेशक तू तो मोहलत दिए वो में से एक वक्त मालूम तक। काला रब्बी, कहने लगा है, मेरे रब इसकी वजह से तूने मुझको अगवा किया, बीमा अगवैता नहीं, अलबत्ता ज़रूर मैं सजाऊंगा इनके लिए दुनिया को और इन सब को अगवा कर लूँगा। सिर्फ इन दो या तीन आयात आपके सामने भी हैं इस वक्त, नज़र डालिए कितनी दफ़ा लफ्ज़ रब्बी आया, रब्बी रब्बी, ऐ मेरे रब। तो पहली बात तो नोट कीजिए कि इब्लीस अल्लाह को रब मानता था, और रब में वो सारे छह मानी आते हैं जो हम सूरह फातिहा से पढ़ते आ रहे हैं, खालिक भी है, मालिक भी है, राजिक भी है, मुश्किल कुशा भी है, दुखों को दूर करने वाला भी है, दस्तगीर भी है वो। तो इब्लीस अल्लाह को रब मानता था। दूसरी बात देखिए, इसने दुआ की रब्बी कहकर, इसने बीच में ये भी नहीं कह दिया रब्बे आदम, माई लॉर्ड, अल्लाह से कनेक्शन भी था। तीसरी बात देखिए, इसने मोहलत मांगी दोबारा उठाए जाने के दिन पे, तो ईमान बिलआखिरा भी है, हाथ ठंडे हो रहे हैं सोच सोच के, आखिरत पे ईमान रखता है ना। अगली बात नोट कीजिए कि अल्लाह से मांग रहा है, इसको यकीन है कि अल्लाह ही दुआओं को सुनता है, इसका ईमान भी दुआ भी बहुत अच्छा है। इसने इन सारी बातों के दौरान एक बात साबित कर दी कि दिल का हसद इसको ले डूबा, वरना अकीदा भी ठीक था, रब को रब भी मानता था, और ख़ुद से मरने और जीने पे भी इसका एतमाद है, यानी अल्लाह ताला के अलमुमीत को भी मानता है, अलमुही को भी मानता है। तो क्या पता चला कि अगर हमारे दिल में हसद है या अगर हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानते तो अच्छे से अच्छे अकीदे के बावजूद हम गुमराह, हम भटके हुए हैं। फिर इसने इंतकामी आग क्या लगाई कि मैं आदम के लिए और इसके बच्चों के लिए दुनिया को सजा दूंगा। क्या आज ये कामयाब है कि नहीं? बिल्कुल कामयाब है। कैसे हंसता होगा इब्लीस इंसानों को दुनिया के पीछे लगा देखकर, और कहा कि इन सबको ले जाऊंगा, और ये अंदाज आगे हम अगले पारे में भी देखेंगे सूरत बनी इसराइल में। अब सब के ऊपर इसका काबू चलेगा, लेकिन खालिस बंदे शैतान के काबू में नहीं आते, इसका तज़किरा आयत 40 से 41 में है, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। हाँ, तेरे खालिस बंदों पे मेरा कोई काबू नहीं चलता, कहा यही है सीधा रास्ता जो मुझ तक पहुंचता है। इखलास की बातें हो रही हैं, लिख लीजिए। शैतान के बहकावे क्या थे कि मैं इंसान को बहकाऊंगा, और ख़ुद ही गिव अप कर रहे हैं, यानी दुनिया में लोगों को इनके बुरे काम खूबसूरत करके दिखाऊंगा, दुनिया की रौनक और मोहब्बत में इनको उलझाऊंगा, दुनिया में इतना मसरूफ कर दूंगा कि दीन के लिए ना मोहलत होगी ना कोई इनको फ़ायदा। हाँ लेकिन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। और यहाँ लफ्ज़ मुखलस को देखिएगा, हमारे यहाँ अमूमन मुखलिस बोलते हैं। इनका फ़र्क आगे सूरह सवाफात में आप देखेंगे कि मुखलिस होना है आपको मुझे या मुखलस। मुखलिस होना बड़ी नेकी है या मुखलस होना, इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए अगले पारों का। लेकिन पता क्या चला कि शैतान उसे भटकाता है जो खुद भटकना चाहता है। ये बात आपको आयत 42-43 में दिखेगी। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। अल्लाह कह रहे जा तूने जो करना कर ले, लेकिन जो मेरे बंदे हैं ना इबादी, अल्लाह सुब्हान तआला अपनी तरफ निस्बत दे रहे हैं। जैसे इबादुर रहमान आएगा ना सूरह फुरकान में आगे 19वें पारे में, इसी तरह इबादी मेरे बंदों पे तेरा कोई ज़ोर नहीं। हाँ मगर जो तेरी पैरवी करेंगे गुमराहों में से उनके सबके वादे की जगह जहन्नुम है। तो क्या पता चला कि जब तक बंदा भटकने का इरादा ना करे, शैतान भी उसको नहीं भटका सकता और अल्लाह भी उसको नहीं भटकने देता। और आगे जब भटकता है कोई तो कहाँ जाएगा, जहन्नुम में। और यहाँ जहन्नुम के 7 दरवाज़ों का तذکرہ है, लहासबतु अबवाब, उसके 7 दरवाज़े हैं और हर दरवाज़े में से एक हिस्सा है तकसीम शुदा, यानी अपॉइंटेड डोर है। ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में एक रिवायत सुन लीजिए। मुफस्सरीन कराम कहते हैं कि ये 7 दरवाज़े 7 तबकात के लिहाज से हैं, यानी लेवल्स हैं। जहन्नम के कुल 7 तबके हैं, हर तबके का अलग दरवाज़ा है, हर तबके के लोग अपने मखसूस दरवाज़े से दाखिल होंगे। आपने देखा होगा जब कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा होता है या बहुत बड़ा होटल है या और कुछ नहीं तो एयरपोर्ट, तो वहाँ जगह लिखी होती हैं, पैसेंजर्स जोन, स्टाफ जोन, एम्प्लॉइज, इससे आगे आप सिर्फ पैसेंजर जाएंगे। और फिर अक्सर जहाज़ बंद होने से पहले वो कहते हैं कि जो ज़मीनी स्टाफ है वो नीचे उतर जाए। जहन्नुम में भी कुछ ऐसा ही है, आइए ज़रा उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जहन्नुम के 7 दरवाज़े क्या हैं, 7 नाम हैं लिख लीजिए, 7 डिफरेंट लेवल्स ऑफ जहन्नुम। मतलब जहाज़ में आप देखिए एक इकोनॉमी क्लास होती है, एक बिजनेस क्लास है, एक फर्स्ट क्लास है, कोई एक आध और हो गई होंगी, एग्जेक्टिव है, लेट के जाइए, जो भी करिए। जहन्नुम में भी लोगों को उनके अमाल के अतबार से मुख्तलिफ जगह पर रखा जाएगा, जिसमें एक तो जहन्नुम है, बड़ा मारूफ नाम है, जोहम से है, घूरने वाली चीज़। शेर जब घूरता है ना अपने शिकारी को, वो कैफियत है जहन्नुम की। अल्लाह ताला बचाए, सूरत मुल्क में भी आता है कि जहन्नुम उनको घूर रही होगी। फिर साइर, सार से जलाने वाली, लजवा, शोले की लपट वाली, खुतामा पता क्या है, चिकना चूर करने वाली, आपका ग्राइंडर। आप मोटा मोटा गरम मसाला डालकर उस मशीन को ऑन करें, थोड़ी देर में वैसे पाउडर होता है जहन्नुम लोगों का सुरमा बना देगी, अल्लाह सबको बचा दे। फिर सकर, आग से, और जहीम, जहीम के लफ्ज़ में भी घूरने का लफ्ज़ आता है, और हाविया। और आपको पता है कि हाविया क्या है, हवा से। सबसे जो डीप डाउन पोर्शन है ना जहन्नुम का, तंदूर को जहन में लाइए, जितना नीचे जाएंगे उतना नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाविया सबसे नीचे है। और इसका तذکرہ आप पीछे पढ़कर आए हैं, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्की असफली मिनन नार। अल्लाह अकबर, मेरा 5वें पारे की आखिरी आयतें हैं कि जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में मुनाफिक यानी हिपोक्रेट होंगे, कि जो कौल फेल के तजाद के साथ दीन पे चलते थे। तो ख्वाहिशों के पीछे भागने वाले हवा परस्त लोग हाविया में गिरा दिए जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर एक को जहन्नुम से बचाए और हमें दूसरों की हिदायत का भी ज़रिया बनाए और अपनी भी। अब आगे कुछ जन्नतियों की बात है। ये कुरान का बड़ा प्यारा मिजाज है, जहाँ हमारा दिल डर जाता है ना तो साथ ही जन्नत की बात आ जाती है। तो लिहाजा आयत 45-48 में अहले जन्नत की बाहम कदूरतें ख़त्म कर दी जाएंगी। कदूरतें क्या हैं, एनिमिटी, दिल के बुगज, सास बहू है नहीं लगती, शोहर बीवी के मिजाज में फ़र्क है, सगे भाई बहनों में कभी कभी कुछ ना कुछ दिल मैला होता है। कदर कदूरत होता है दिल मैला होना। तो जन्नत में अगर सास भी पहुंच गई और आप भी उधर हैं, आपका तो मूड ही खराब होगा। आप कहेंगे मैं इतनी मुश्किल से तो अलग हुई थी इनसे, मैंने तो घर ही अलग लिया, अब ये अम्मा जी यहाँ भी आ गई। कभी कभी शौहर बीवी का मिजाज नहीं मिलता, दोनों नेक होते हैं तो अब आंध आकर कहते लो जी यहाँ भी ये आ गए। कोई इंसानों में आपको अच्छा नहीं लगता, हो सकता है इसमें नो प्रॉब्लम, मुंह पे ना लाएं, उसके खिलाफ कोई बुरी बात ना करें, लेकिन राय होती है। कुछ लोगों की कुछ हैबिट्स अच्छी नहीं लगती, अब वो भी वहाँ हैं, अब आप क्या करें। अल्लाह ने उसका जवाब बता दिया, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातें व उयून, बेशक अल्लाह से डरने वाले जन्नतों और चश्मों में होंगे, दाखिल हो जाओ इसमें सलामती के साथ, अमन में रहने वाले। और व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, ये है आपका टॉपिक, और हम खींच के निकाल देंगे उनके दिलों के कीनों को, और भाई भाई बनकर मसनदों पे आमने सामने बैठे होंगे, ना उनको छुए कि उसमें कोई तकलीफ यानी थकन, और ना वो उससे कभी निकाले जाएंगे। अहदीस से पता चलता है कि जन्नत में दाखिल करने से पहले अल्लाह ताला एक नहरे हयात भी उसका नाम आता है, इस तरह एक नहरे हयावान भी आता है, इनमें से जन्नतियों को नहला कर या उसमें डुबकी दिलाएंगे, और उनमें से एक नहर ऐसी है कि जब उसमें से निकलेंगे तो दिल धुल चुके होंगे। आज भी नहीं कहते दिल धो लो, आज तो हम अपनी आशिकों से दिल धो लेते हैं ना, चलो रो धो के दिल साफ हो गया, तो पता क्या चला कि जन्नत में किसी के दिल में दूसरे के बारे में ग्रज नहीं होगा। आप बेफिक्र हो जाइए, सास अम्मा के लिए भी जन्नत की दुआ किया करें, वो वहाँ भी आपको अलग घर में रहने देंगी, लेकिन आपका वहाँ दिल उनसे खट्टा नहीं होगा। आज हम इतने प्यारे रिश्तों को कितना कड़वा कर लेते हैं। आप देखिए, एक औरत है जिसने एक बच्चे को पैदा किया, वो सारी तकलीफें उसने सही जो बच्चे के माँ के पेट के दौरान हुई, फिर उसकी डिलीवरी के वक्त को सहा, फिर 2 साल उसको दूध पिलाया, उसकी गंदगी साफ़ की, फिर उसके बाद बड़ा होने तक उसको सुबह उठाना, उसकी तरबियत, स्कूलों में भेजा, पढ़ाया लिखाया, और अब जब वो एक पला पलाया लड़का मर्द की सूरत में आपका शौहर बन गया, तो आप कहते हैं कि ये औरत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अक्सर लोगों से ये बात कहती हूँ कि सास से मोहब्बत करने की बस एक भी वजह बहुत है, कि वो आपके शौहर की माँ है, वो उनकी जन्नत है। अगर सास ना होती तो आपका शौहर आपको इस तरह का मिलता? आप देखिए ना कि बच्चों को छोड़ दीजिए खुला, गाली गलौच बोलें, बदतमीजी करें, बद तहजीब हों, तो वो बच्चे कल आने वाली बीवियों का क्या हाल करते हैं। तो अपनी सासों से मोहब्बत कीजिए, इसी तरह हर रिश्ते से मोहब्बत करें। कभी भी इंसानों में 100% आपकी मर्जी का नहीं होगा। तो अगर इस आयत को मैं आपके सामने रख दूं कि जन्नत में जाने से पहले दिल धुल जाएंगे, तो अगर आप आज दुनिया में दिल धो लें, दुनिया भी जन्नत है। बस लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी अजीरन कर लेते हैं, हमने अपनी ज़िंदगियों को खुद ही जहन्नुम का एक कह लीजिए कि मंजर दे दिया है। तो आज यहाँ बैठे बैठे नियत कीजिए, सुनते सुनते नियत कीजिए कि मैंने सबसे दिल साफ़ किया। हमारे बड़ों में कुछ लोग थे, जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे बैठते तो कहते, भाई मैंने तुम सबको माफ़ किया, तुम भी मुझे करना, पता नहीं कल उठना है कि नहीं उठना। अब ये दिलों में बातें रख कर, कभी जायदादों की, कभी रिश्तों के होने ना होने की, तो ये दिल गंदा होगा। गंदे बर्तन में तो आप जमजम भी नहीं पी सकते। तो लिहाजा साफ दिल वालों के लिए ये दुनिया भी जन्नत है, उनकी असल ज़िंदगी है मज़े की, कि जो यहाँ के भी मज़ों में और वहाँ के भी। वरना आज आप देखिए, करोड़पति लोग, अरबपति लोग हैं, लेकिन दिलों में नफ़रतें और बुग़ज़ हैं, और उस घर में जाकर आपको मज़ा ही नहीं आता जहाँ लोग एक करोड़ों में खेल रहे हो लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत हो। फिर उसके बाद आगे आयत नंबर 49 से 50 में अल्लाह ताला रहम भी करता है और अज़ाब भी देता है। नब्बे इबादी अन्नी अनिल गफूर रहीम, एक एक्सट्रीम है, मेरे बंदों को ख़बर दे दीजिए कि मैं बख्शने वाला और मेहरबान भी हूँ, और साथ ही ये भी बता दो, वन नाजा भी हुआ अजाब उलीम, और मेरा अजाब दर्दनाक है। यानी बात ये कई बार दोहराई जा रही है कुरान में, तो क्या पता चला कि अल्लाह रहम भी करता है और अजाब भी देता है। किस पे रहम करता है? सीधी सी बात है, जो रहम के लायक है, और किसको पकड़ेगा? जो पकड़े जाने के लायक है। अल्लाह से हमेशा उसका रहम मांगे। उसके बाद अब अंबिया कराम के किस्से शुरू होंगे, 51 से 66 में फरिश्तों की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आमद का तذکرہ है। पीछे भी हम पढ़ कर आए कि वनब्बे अंदईफ़ इब्राहिम, और इनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की ख़बर दे दीजिए। जब वो दाखिल हुए उन पे, कहने लगे सलाम, कहा हम तो तुमसे डरते हैं। यानी ये किस्सा हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें से कुछ मॉरल्स एंड लेसन्स लेते हैं। पहली बात है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी रूप में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको नहीं पहचान सके। इससे पता चला कि नबी भी अंबिया कराम भी गैब की बस उतनी बातें और तब तक जानते हैं जब अल्लाह उनको ख़बर दे दे। अगर अल्लाह ना बताए तो उनको भी नहीं पता चलता, पहली बात। दूसरी बात यह कि डरना, वजीलून, पीछे आप पढ़ के आए सूरह अनफाल में, वजीलत कुलूबहुम, कुरान सुन के दिल में जो कैफियत है। तो नबी के ऊपर भी एक बशरी खौफ आ सकता है। डर किस बात का था कि ये खाना क्यों नहीं खा रहे? और उस दौर में खाना ना खाना दो बातों की अलामत थी। नंबर एक के जो आया है वो दुश्मनी की नीयत से आया है, और नंबर दो कोई बुरी खबर लेकर आया। अच्छा, फरिश्ते ने क्या कह दिया? नुबश्शिरु का भी गुलाम नलीम, हम आपको एक बड़े दाना बेटे की खुशखबरी देते हैं। इब्राहिम कहने लगे, क्या तुम मुझे खुशखबरी देते हो इस वक्त जबकि मुझे बुढ़ापा पहुंच गया? ये किस बात की खुशखबरियां तुम दे रहे हो? कहने लगे, हम तो आपको खुशखबरी सच के साथ दे रहे हैं, बस आप नाउमीद लोगों में ना हो जाएं, क्योंकि नाउमीद नहीं होते अल्लाह की रहमत से मगर भटके हुए लोग। 100 साल की उम्र थी आलमोस्ट हज़रत इब्राहिम की, और अल्लाह उनको खुशखबरी दे रहा है। और बीवी भी कोई कम उम्र की तो नहीं थी, 80+ थी। किधर गई वो एज जिसमें बच्चे नहीं होते? आज ज़रा सी बड़ी औरत सामने आ जाए तो हम कहते हैं, नहीं बच्चे कैसे होंगे? आज ख़वातीन अपने बारे में 40-50 के बाद सोचती हैं, मेरे तो बच्चे ही नहीं होंगे, तो अल्लाह ने यहाँ क्या बता दिया। और अंबिया कराम का भी अंदाज़ बिल्कुल ह्यूमन लेवल का नहीं दिख रहा। उन्होंने ये नहीं कहा, हाँ मैं नबी हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर आगे कौम लूत की सरकशी की जो बात हो रही है आयत नंबर 67-77 में, और उन पर अल्लाह के अजाब का जो कूड़ा बरसना उसकी बात है। यानी फरिश्तों ने एक ही वक्त में हज़रत इब्राहीम को बेटे की खुशखबरी भी दी और साथ ही साथ कौम लूत पर अजाब की खबर भी दी। ये कौन थे? ये उस दौर में लूतियत का फेल करने वाली कौम थी। वजाहलुल मदीनत यस्तबशिरून, और बस्ती वाले खुशियां मनाते हुए आगे। सहाबे कराम कहा करते थे कि अगर कुरान पाक में इस अमल का तذکرہ ना होता तो हम कभी ना मानते कि ये मुमकिन भी है। इंतहाई गैर फितरी चीज़। आप देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा बनाए हैं ना, और उसके मुताबिक हम उनको डील करते हैं। खाना खाते हुए हमारा चम्मच किधर जाता है? मुँह में जाता है ना। अगर कोई चम्मच मुंह में डालने की बजाय अपने कान में डाले, क्या लगेगा? बस यही लगते हैं ऐसे लोग जो फितरत के रास्ते बंद कर दें। जिस तरह जिस्म के हर उस का कोई काम है ना, खाने में, पीने में, सांस लेने में मददगारी है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे प्राइवेट पार्ट्स को इंसानी नस्ल की बका का जरिया बनाया। अब वो अमल ऐसा तकलीफ दे था कि उसके साथ लज्जत रख दी। ये ऐसी है कि जैसे कड़वी गोली खाते हुए साथ थोड़ी सी कोई चीनी डाल दी जाए या उसके साथ कोई मीठा दे दिया जाए। यानी इतनी नामुमकिन चीज़ को अल्लाह ने खूबसूरती देने के लिए कशिश डाल दी, वरना तो कभी बच्चा ही ना दुनिया में आए। लेकिन इस कौम ने क्या किया? उस रास्ते को बंद किया। आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा फितना इस चीज़ का है। आपको, मुझे, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को पूरे कुरान में से सिर्फ वो आयात ख़ास तौर पे जिसमें इस कौम की सज़ा और इसका तذکرہ है ना, बड़े गैर महसूस तरीके से पढ़ा देना चाहिए। आज हो क्या रहा है कि इन चीज़ों पे स्लोगन्स हैं, बड़ी बड़ी कंपेन्स हैं, वो इसको खूबसूरत करके दिखा रहे हैं, लेकिन कुरान उसका अंजाम दिखा रहा है। पत्थर भी बरसे, 3 सज़ाएं इकट्ठी इस कौम पर आई थी। इनके नामों के साथ पत्थर आए और इनके सर के रास्ते इनके प्राइवेट पार्ट से निकल गए। इनकी बस्तियों को जिब्राइल ने उठाया और ऊपर ले जाकर पलट दिया। मोतफिकात, उलटाई गई बस्तियां। तो आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को बताएंगे ना कि ये अमल करने की वजह से कौम तबाह हो गई, तो फिर अल्लाह ताला उनके दीन ईमान की हिफाजत भी करेगा। और वल्ला ही अपने बच्चों के, अपने मर्दों के, अपनी बेटियों, औरतों के हाथों से ऐसे गैजेट कि जिससे वो ऐसी चीज़ें देखें या सुने, और इतना इजी एक्सेस हो गया, वो उस वक़्त तक उठा लीजिए जब तक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसी उनके अंदर ईमान की गैरत ना हो। हम चीज़ें तो इस्तेमाल की दे रहे हैं लेकिन तरबियत वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप इसको दें, लेकिन अपने बच्चों की निगाहें, उनके दिल दिमाग की बात, उसको पूरी अल्लाह की रज़ा के साथ रखिए।